हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 262। अपने पीछे से आती हुई आवाज़ सुनकर नैना एकदम चौंक गई और पीछे मुड़कर उस तरफ देखा जहाँ से किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया था। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वो एकदम चौंक गई क्योंकि एक आदमी उसके पीछे एकदम करीब खड़ा था। उसकी हाइट नैना से काफ़ी ज़्यादा थी। देखने में वो हैंडसम और अच्छी पर्सनालिटी का लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे जिन्हें देखकर नैना को कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। उस आदमी को इतना नज़दीक देखकर नैना जल्दी से 2-3 कदम पीछे हट गई। वो उस आदमी के इतना करीब नहीं खड़ा होना चाहती थी क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, उसकी मूवी का मेन लीड एक्टर मानस रॉय था। नैना उसे जानती तो नहीं थी, लेकिन नैना ने उसकी कुछ फेमस मूवीज़ देखी थीं, इसीलिए वो उसे शक्ल और नाम से पहचानती थी। साथ ही उसे इस बारे में भी पता था कि वो उसकी मूवी में मेन लीड एक्टर है, लेकिन नैना के साथ उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन नहीं था, इसीलिए अभी तक उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। नैना को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो इस तरह एकदम से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा और उसका नाम पुकारेगा। हेलो सर, आप यहाँ पर क्या? नैना ने थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए कहा। ओ रिलैक्स मिस नैना, आई नो मैं इतना बड़ा और फेमस स्टार हूँ कि सभी मेरे सामने घबरा जाते हैं, बट अभी तो मैं आपका को एक्टर भी हूँ। बस इसीलिए आपको अकेले खड़ा देखकर यहाँ आपसे पूछने के लिए आ गया कि सब ठीक तो है ना? मानस ने नैना के कंधे पर हाथ रखते हुए एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ पूछा। नैना को उसका टच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो अनकंफर्टेबल होते हुए थोड़ा सा पीछे हो गई। उसने अपना कंधा हल्का सा झुकाकर मानस का हाथ हटवाने की कोशिश की, लेकिन मानस उसका मतलब समझते हुए भी उसी तरह हाथ रखकर खड़ा रहा और बोला, क्या हुआ? कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है वैसे? सच में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो नो सर, आई एम टोटली फाइन और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस यहाँ पर ऐसे ही खड़ी हुई हूँ। आई थिंक आई हैव टू गो, नैना ने बहाना बनाकर वहाँ से जाने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि वो स्टाफ मेंबर की लड़की अब तक सैंडविच लेकर वहाँ पर नहीं आई थी और नैना मानस के साथ वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि मानस एक ऐसा मूवी स्टार था जो अपनी मूवीज से ज़्यादा को-स्टार्स के साथ हुई अपनी लड़ाई झगड़ों और अफेयर्स को लेकर खबरों में रहता था। इस वजह से ही वो ज़्यादा पॉपुलर भी था और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ज़्यादा डायरेक्टर्स उसे अपनी मूवी में कास्ट कर लेते थे। नैना नहीं चाहती थी कि उसे और मानस को कोई इस तरह से साथ खड़ा देख ले और फिर उनके बारे में अगले दिन अखबार में कोई न्यूज़ छप जाए या सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ आ जाएँ। नैना वहाँ से जाने ही वाली थी तभी मानस ने उसे रोकते हुए कहा, आप थोड़ी जल्दी में लग रही हैं, वैसे क्या हम 2 मिनट बात नहीं कर सकते? आखिर हमें साथ काम करना है, थोड़ी देर बात कर लेंगे तो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। इतना बोलते हुए मानस ने नैना के कंधे से अपना हाथ हटा लिया और अपनी बात करने का तरीका एकदम बदलते हुए बोला। उसके इस तरह अचानक बदले हुए बर्ताव देखकर भी नैना उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। नैना ने उसकी बात पर कुछ नहीं बोला और वो नर्वस होकर अपने हाथ पैर हिलाते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, नैना कम हियर, मुझे कुछ डिस्कस करना है तुम्हारे साथ, हमारा सीन शूट होना है नेक्स्ट। वो आवाज़ सुनकर नैना की आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर विवान खड़ा था और नैना को अपनी तरफ बुला रहा था। सॉरी सर, आई हैव टू गो, हम बाद में बात कर लेंगे फिर कभी, नैना ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर सामने खड़े मानस ने भी एक फेक स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए हाँ में सिर हिलाकर कहा, ओके यू कैन गो। विवान के बीच में आकर बोल देने की वजह से मानस बहुत बुरी तरह चिढ़ गया था और वो गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, लेकिन फिर भी उसने नैना के सामने ये सब कुछ शो नहीं किया। उसके वहाँ से जाते ही उसने अपने हाथ की मुट्ठियाँ कसकर बांध लीं और फिर वहाँ से चला गया। थैंक यू सो मच विवान, आज तो बचा लिया तुमने, बताओ क्या बात करनी है? विवान के सामने पहुँचते ही नैना राहत की सांस लेते हुए बोली, कुछ डिस्कस नहीं करना है और वो तो तुम्हारी शक्ल पर ही दिख रहा था कि तुम उसके साथ कितनी अनकंफर्टेबल हो, बस इसीलिए मैंने ये बात बोली, विवान ने एकदम आराम से कहा, जैसे कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विवान की ये बात सुनकर नैना की आंखें बड़ी हो गईं और उसने कहा, सीरियसली, इतना ऑब्वियस था क्या मेरे चेहरे पर? तुम्हें देखकर ही पता चल गया? वैसे सच कहूँ तो मुझे वो मानस कुछ ठीक नहीं लगा। हाँ, वो मुझे भी ठीक नहीं लगता। बहुत ही एटीट्यूड और अपने अकड़ में रहता है और अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता है, जबकि उसे भी पता है कि वो ज्यादातर नेगेटिव बातों के लिए ही फेमस है। मानस के बारे में बात करते हुए विवान ने भी बुरा समूह बनाकर कहा। उसे इस तरह देखकर नैना हंसते हुए बोली, अच्छा, तुम तो शायद मुझसे भी ज्यादा नापसंद करते हो उसे। वैसे मुझे लगता है कि हमारी काफी बनेगी और हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? विवान ने कन्फ्यूजन से पूछा। नैना ने उसके करीब आकर उसके कान में धीरे से बोलते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि हम दोनों ही उसे पसंद नहीं करते ना, और दोस्त बनने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। इतना बोलते हुए नैना हंसने लगी तो फिर उसकी तरफ देखकर विवान भी हंस दिया उसके इस तरह बोलने पर, और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, ओके, लेट्स बी फ्रेंड्स। विवान के हाथ बढ़ाने पर नैना ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिला लिया। उसके बाद विवान ने नैना से पूछा कि वो शूटिंग लोकेशन से थोड़ी दूर आकर यहाँ साइड में अकेली क्या कर रही थी, तो नैना ने उसे बताया कि उसे भूख लगी है क्योंकि वो सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी लेट होने की वजह से, और एक स्टाफ मेंबर से उसने सैंडविच मंगवाया था तो वो उसका ही वेट कर रही थी, लेकिन वो अब तक नहीं आई थी। इस पर विवान ने हंसते हुए कहा, लगता है काफी तेज भूख लगी है तुम्हें। एक काम करो, तुम जाकर वहाँ पर बैठो जहाँ हम पहले बैठे थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाता हूँ वहीं। विवान के हंसने पर नैना पहले तो बच्चों की तरह नाराज होने वाला मुंह बनाया, लेकिन फिर उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए उसी तरफ बढ़ गई जहाँ पर वो दोनों कुछ देर पहले डायलॉग रिहर्सल कर रहे थे। सुनैना और आदित्य एक साथ ऑफिस पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक इस बारे में मीडिया को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने बैक गेट से एंट्री ली थी और मीडिया के सारे लोगों को पहले ही कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाकर रखा गया था। उन सबका सामना करने से पहले सुनैना बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और वो नर्वसनेस में अपना निचला होंठ चबा रही थी और अपना दायां हाथ बाएं हाथ से कस कर पकड़े हुए केबिन में इधर से उधर टहल रही थी। इस तरह से घबराना बंद करो सुनैना, तुम्हें खाने के लिए नहीं आए हैं वो सब। आदित्य काफी देर से उसे इस तरह देख रहा था, लेकिन फिर भी सुनैना उसी तरह से इधर उधर टहल रही थी और एक जगह पर नहीं रुकी, तो आदित्य ने थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुनैना एक जगह पर रुक गई और आदित्य को गुस्से से घूरकर देखते हुए बोली, ये देखो कौन बोल रहा है, जिसे खुद सोशल एंजाइटी है और ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, वो मुझे एडवाइस दे रहा है। हाँ, तो मुझे नहीं पसंद और मुझे फोबिया, सोशल एंजाइटी सब है, लेकिन तुम्हें तो नहीं है ना, तो फिर तुम इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही हो? जाओ और जाकर सामना करो, ये तो तुम्हारा डर भी नहीं है, उसके बाद पर आदित्य ने कहा।
आदित्य की ऐसी बात सुनकर सुनैना को लगा कि आदित्य को शायद उसकी बात का बुरा लग गया है, जबकि सुनैना ने उसे ताना मारकर ये बात नहीं बोली थी। वो तो बस खुद डर रही थी और जब आदित्य ने उससे रिलैक्स होने को कहा तो फ्रस्ट्रेशन में उसने एकदम से ही बिना कुछ सोचे समझे ये बात बोल दी। तभी वो आदित्य के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ती हुई बोली, आई एम सॉरी आदि, तुम्हें बुरा लगा हो तो, बट आई स्वेयर मैं तुम्हें ताना नहीं मार रही, मैं तो सच में बस अपनी नर्वसनेस ही कम करने के लिए ये सब बोल रही हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुनैना के तुरंत ही इस तरह से माफी मांगने पर आदित्य ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बहुत ही प्यार से उसे समझाते हुए बोला, डोंट वरी एंड रिलैक्स, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी बुला नहीं लगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम कौन सी बात किस टोन में बोल रही हो और अभी तुम्हें इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम अब सिंघानिया इंडस्ट्रीज की ओनर हो तो बस उस तरह से बर्ताव करो, बाकी सबके मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे, आदित्य ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुनैना ने एक गहरी सांस ली और फिर हाँ में अपना सिर हिलाती हुई बोली, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन आदि जिस तरह तुम मुझे अपने डर से जीतने को कह रहे हो, तुम खुद उस तरह अपने डर का सामना क्यों नहीं करते? वो लोग तुम्हें भी तो नहीं खा जाएंगे ना, और मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और वो उसके इस बात का जवाब देते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि तभी केबिन का दरवाज़ा खुलने की आहट हुई और वो दोनों उस तरफ ही देखने लगे। रवि वहाँ पर खड़ा था और अंदर आने के लिए परमिशन लेते हुए उसने कहा, मे आई कम इन सर, एक्चुअली वो टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा और मीडिया रिपोर्टर इतनी देर से वेट कर रहे हैं और आपको तो पता है ज़्यादा देर लगी तो वो लोग कैसी कैसी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। रवि के पीछे शिवानी भी केबिन के अंदर आई। उन दोनों को देखकर आदित्य ने सुनैना की तरफ देखकर कहा, सोना, अब इन सब बातों का वक्त नहीं है, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तुम जाओ इन दोनों के साथ और ये अपने कान में लगा लो। आदित्य ने उसे ईयरपॉड देते हुए कहा। सुनैना ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके हाथ से वो ले लिया और शिवानी के साथ दरवाजे की तरफ ही बढ़ गई। लेकिन केबिन से बाहर जाने से पहले उसने दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़कर आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने अपनी पलकें झपकाकर उसे इशारा किया और फिर अंगूठे से ऑल द बेस्ट का साइन भी दिखाया। उसके ऐसा करने से सुनैना के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आ गई और वो अब पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। आदित्य से बात करके उसे अच्छा लगा था और हिम्मत भी मिली थी। सुनैना शिवानी के साथ वहाँ से चली गई। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद आदित्य ने रवि से पूछा, सारी तैयारियाँ हो गई है ना रवि, और कोई भी अगर उल्टे सीधे सवाल करे तो उसे तुरंत ही कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलवा देना, या फिर हो सके तो इंटरव्यू बीच में ही रुकवा देना। हम किसी के भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्पेशली सुनैना के साथ। ठीक है सर, मैं समझ गया, और हाँ, वो सारी तैयारी हो गई है, अब आपको भी जाना चाहिए, रवि ने सिर हिलाकर कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य भी अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और फिर उसने रवि से कहा, तुम भी जाओ रवि, और वहाँ पर सुनैना के साथ ही रहना, यहाँ पर मैं देख लूँगा। ओके सर, बोलकर रवि वहाँ से चला गया। क्रमशः